एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथासार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथासार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक प्रयोग करने वाले हैं।
हाँ, आज हम अमेरिकी लेखक वैली लैम की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से।
बिल्कुल, किसी प्रकाशित उपन्यास के जरिए नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी के जरिए जो शायद कभी कागज पे छपी ही नहीं।
हम बात कर रहे हैं द रिवर इज वेटिंग की।
ये वाकई एक अनूठा नजरिया है। मतलब एक काल्पनिक उपन्यास के सारांश को आधार बनाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लेखक की शैली, उसकी पहचान क्या होती है।
सही बात है, वैली लैम को हम जानते हैं शीज कम अनडन या आई नो दिस मच इज ट्रू जैसे उपन्यासों के लिए।
हाँ, जिनमें परिवार के भीतर दबे राज, पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द और अपराध बोध की कहानियां हमें मतलब झकझोर कर रख देती हैं।
हमारे लिए एक केस स्टडी की तरह। क्या ये काल्पनिक कहानी वैली लैम के साहित्यिक डीएनए को पकड़ पाती है?
यही सवाल है। क्या इसमें वही गहराई, वही भावनात्मक उलझने हैं जो उनके पाठकों को उनसे जोड़ती हैं? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की तहों में उतरते हैं।
तो कहानी हमें ले लाती है कनेक्टिकट के एक छोटे काल्पनिक शहर विलोब्रुक।
अच्छा।
और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सारा एशफर्ड से। वो 42 साल की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है।
और वो अपने बचपन के घर लौटती है ना?
हाँ, अपनी माँ एलिनोर की अचानक मौत के बाद, और वो भी कोई छोटे मोटे वक्त के बाद नहीं, पूरे 20 साल बाद।
20 साल? ये तो बहुत लंबा अरसा है। तो ये कोई भावुक घर वापसी नहीं होगी?
बिल्कुल नहीं, ये एक मजबूरी है। ये वो घर है, वो शहर है जिससे वो हमेशा भागती रही है।
और यहीं हमें वैली लैम का वो जाना पहचाना किरदार नजर आता है। एक ऐसा किरदार जो अपने अतीत से बुरी तरह उलझा हुआ है।
हाँ, जो भागकर अपनी एक नई पहचान बना चुका है, लेकिन जिसे जिंदगी वापस उसी मोड़ पर ले आती है जहाँ से सब शुरू हुआ था।
तो सारा का इरादा क्या है?
उसका इरादा तो बस यही है कि जायदाद के काम निपटाएं और फौरन लौट जाए। लेकिन अतीत के दरवाजे इतनी आसानी से बंद कहाँ होते हैं?
नहीं होते। तो उसे वहाँ कुछ मिलता है?
हाँ, उसे अपनी माँ की धूल भरी अटारी में कुछ पुरानी डायरियां और चिट्ठियां मिलती हैं।
अटारी? कहानियों में अटारी हमेशा राज की जगह होती है।
वही तो, वो सिर्फ पुरानी चीजों का ढेर नहीं, बल्कि परिवार के दबे हुए जहन की तरह होती है। यहीं से राज की पहली परत खुलती है।
और ये राज कितने पुराने हैं?
ये दस्तावेज एशफोर्ड परिवार की 3 पीढ़ियों के उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें 50 सालों से ज्यादा वक्त से, मतलब नदी की गहराइयों की तरह चुपचाप दफनाया गया था।
अगर हम किरदारों की बात करें तो सारा खुद कैसी है?
सारा एक बहुत ही जटिल किरदार है। बाहर से देखो तो एक कामयाब प्रोफेशनल लगती है,
लेकिन अंदर से?
अंदर से वो एक अपराध बोध से दबी हुई बड़ी बहन है। वो आज भी अपने छोटे भाई टॉमी की सालों पहले नदी में डूबने से हुई मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है।
और ये अपराध बोध उसकी जिंदगी का एक अनकहा सच बन गया है।
बिल्कुल। दूसरा किरदार है सारा की माँ एलिनोर। वो शारीरिक रूप से मौजूद तो नहीं है, पर उनकी आत्मा पूरी कहानी पर छाई हुई है,
उनकी डायरियों के जरिए।
हाँ, उनकी डायरियां बताती हैं कि वो एक ऐसी माँ थी जो बेटे को खोने के गम से कभी उभर ही नहीं पाई। पर उनका दुख सिर्फ दुख नहीं था, वो एक खोज भी थी।
मतलब
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस दिन के सच को जानने की कोशिश में लगा दी, और शायद यही खोज उन्हें धीरे धीरे खत्म कर गई।
और तीसरा सबसे अहम किरदार है टॉमी।
हाँ, टॉमी, जो सिर्फ एक याद बनकर कहानी के केंद्र में है। उसकी मौत एक हादसा थी या कुछ और, यही सवाल इस उपन्यास की धुरी है, जिसके इर्द गिर्द परिवार का सारा दुख, गुस्सा और अनकहे सवाल लिपटे हुए हैं।
तो सारा इन डायरियों को पढ़ना शुरू करती है।
हाँ, और उसे लगता है कि वो शायद अपने भाई की मौत के बारे में कुछ जानेगी, लेकिन उसे जो मिलता है वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह है।
क्या मिलता है उसे?
उसे अपनी परदादी की एक डायरी मिलती है जिसमें एक ऐसी घटना का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देता है।
अच्छा।
और यही कहानी एक साधारण पारिवारिक दुख से आगे बढ़कर एक गहरे रहस्यमय पैटर्न की तरफ इशारा करती है।
बिल्कुल,
ये वैली लैम की खासियत है। वो दिखाते हैं कि दर्द कभी अकेला नहीं होता, उसकी जड़ें अक्सर इतिहास में होती हैं।
तो उस डायरी में क्या लिखा था?
उस डायरी में लिखा था कि साल 1923 में परदादी का भी एक बेटा उसी विलोब्रुक नदी में डूबा था।
क्या? उसी नदी में?
हाँ, और सिर्फ नदी ही नहीं, ठीक उसी जगह पर जहाँ 27 साल बाद टॉमी डूबा था।
ये तो बहुत अजीब है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता?
नहीं हो सकता, और ये पढ़कर सारा को एहसास होता है कि उसके परिवार पर ये कोई पहली त्रासदी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अभिशाप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है।
ये सिर्फ एक कहानी का मोड़ नहीं है, ये उपन्यास का दिल है, जिसे हम विरासत में मिला आघात या इनहेरिटेड ट्रॉमा कहते हैं।
सही कहा। कैसे एक पीढ़ी का दर्द बिना कहे सुने दूसरी पीढ़ी के डीएनए में उतर जाता है। एशफर्ड परिवार की औरतें दशकों से एक ही बोझ ढो रही थीं।
और उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं।
बिल्कुल, हर कोई खुद को अकेला समझ रहा था, और ये एहसास सारा को तोड़ भी देता है और उसे एक नई हिम्मत भी देता है।
उसे समझ आता है कि उसकी माँ की खोज सिर्फ एक माँ की तड़प नहीं थी।
हाँ, बल्कि वो इस पारिवारिक चक्र को तोड़ने की एक कोशिश थी।
और फिर उसे एक और सुराग मिलता है।
क्या?
पता चलता है कि उसकी माँ ने एक निजी जासूस की मदद ली थी।
ओह, तो अब कहानी एक पारिवारिक त्रासदी से एक आपराधिक साजिश की तरफ बढ़ रही है।
हाँ, यही वैली लैम का क्राफ्ट दिखता है। जो नदी अब तक परिवार के दुख और यादों का प्रतीक थी, अब वो एक क्राइम सीन बन जाती है।
उसकी धाराएं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक शहर के दफन किए गए राज भी बहा रही हैं। जासूस के नोट्स और माँ के इकट्ठे किए सबूत इशारा करते हैं कि टॉमी की मौत कोई हादसा नहीं थी।
तो फिर क्या था?
उस दिन नदी के किनारे कुछ और भी हुआ था, कुछ ऐसा जिसे शहर के कुछ ताकतवर लोगों ने मिलकर हमेशा के लिए छुपा दिया।
ये खुलासा तो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि टॉमी कैसे मरा,
बल्कि ये है कि उसे किसने मारा और सच को किसने छुपाया।
यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो लैम के उपन्यासों में बार बार आता है। क्या कुछ सच इतने तकलीफ दे होते हैं कि उन्हें दफन कर देना ही बेहतर है?
या सच का सामना करना ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। सारा अब इसी दौराहे पर खड़ी है।
और शायद यहीं पर उसका पेशा, उसका हुनर उसके काम आता है।
हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता के तौर पर वो दूसरों की कहानियों को दुनिया के सामने लाती रही है। वो जानती है कि कहानी कहने में कितनी ताकत होती है।
लेकिन इस बार उसे कैमरा दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के बिखरे हुए अतीत पर घुमाना है।
ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आई नो दिस मच इज ट्रू में भी ऐसा ही कुछ होता है।
हाँ, वहाँ नायक अपने दादा की कहानी लिखकर अपने परिवार के इतिहास को समझने की कोशिश करता है।
लैम बार बार इस विचार पर लौटते हैं कि अपनी कहानी को समझना और उसे कहना खुद को ठीक करने जैसा है, एक तरह की थेरेपी।
तो सारा के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना सिर्फ सच को उजागर करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद के अपराध बोध से आज़ाद होने का रास्ता भी बन जाता है।
तो वो अपनी माँ की अधूरी जांच को आगे बढ़ाती है। वो शहर के पुराने लोगों से मिलती है, दबी हुई आवाज़ों को कुरेदती है,
और धीरे धीरे उस दिन की तस्वीर साफ होने लगती है।
हाँ, उसे पता चलता है कि टॉमी की मौत शहर के कुछ अमीर और प्रभावशाली लड़कों के साथ हुई एक झड़प का नतीजा थी।
कोई हादसा नहीं था।
नहीं, वो एक मजाक था जो बहुत बिगड़ गया, और फिर उसे छुपाने के लिए एक बड़ा झूठ बोला गया।
और उस झूठ में सिर्फ वो लड़के या उनके परिवार ही शामिल नहीं थे।
नहीं, पूरा शहर उस चुप्पी में भागीदार था। कुछ लोग डर के मारे चुप रहे, कुछ लालच में।
तो विलोब्रुक का मौन ही असली अपराधी था।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी सहूलियत के लिए सच को नजरअंदाज कर देता है, और इसका बोझ पीड़ित परिवार को अकेले उठाना पड़ता है।
कहानी का सबसे मार्मिक क्षण, जिसे हम भावनात्मक चरमोत्कर्ष कह सकते हैं, वो कब आता है?
वो तब आता है जब सारा को ये एहसास होता है कि उसकी माँ की मौत भी इसी सच के बोझ तले हुई थी।
ओह,
एलेनोर सच जान चुकी थी। वो उसे सामने लाने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन एक अकेली औरत की आवाज को पूरे शहर की खामोशी ने दबा दिया। इस लड़ाई ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था।
ये एक बेटी के लिए बहुत बड़ा सच है, ये जानना कि उसकी माँ की मौत का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अनकही लड़ाई थी।
और अब ये लड़ाई सारा की बन जाती है। ये सिर्फ भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं,
बल्कि अपनी माँ को सम्मान देने की लड़ाई भी है।
सही कहा। और वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ का अधूरा काम पूरा करेगी,
अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए।
हाँ, वो अपनी कला का इस्तेमाल टॉमी की सच्ची कहानी बताने के लिए करती है, और ये उसके लिए बहुत खतरनाक है,
क्योंकि वो शहर के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ जा रही है।
दशकों पुराने झूठ को चुनौती दे रही है, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ उनका ही सामना नहीं कर रही, बल्कि अपने उस डर का भी सामना कर रही है जो उसे 20 साल तक विलोब्रुक से दूर रखता था।
और अंत में
जब वो अपनी फिल्म के जरिए सच को दुनिया के सामने रखती है, तो वो सिर्फ टॉमी को न्याय नहीं दिलाती,
वो और भी कुछ करती है।
हाँ, वो एशफोर्ड परिवार की तीन पीढ़ियों की औरतों को उस अपराध बोध और दुख से आजाद करती है जो नदी के पानी की तरह उनकी जिंदगी में बहता रहा। वो विरासत में मिले उस आघात के चक्र को तोड़ देती है।
वाह, तो ये उपन्यास सिर्फ एक रहस्य की कहानी नहीं रह जाता?
नहीं, ये मुक्ति की, सच की, ताकत की और अपनी जड़ों की ओर लौटकर उन्हें ठीक करने की कहानी बन जाता है।
सारा विलुब्रुक आई थी भागने के इरादे से, लेकिन यहीं रुककर अतीत का सामना करके उसे असली आजादी मिलती है।
तो ये काल्पनिक कहानी वैली लैम की दुनिया का एक बेहतरीन अक्स है। इसमें परिवार के वो सारे उलझे हुए धागे हैं, अपराध बोध का वो भारी बोझ है,
और सच के जरिए मुक्ति की वही उम्मीद है जो उनके लेखन की पहचान है। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, हमें दिखाती है कि राज की ताकत हमारी खामोशी में होती है।
और ये भी कि कभी कभी हमें अतीत की कहानियों को फिर से लिखना पड़ता है ताकि भविष्य को एक नई और सच्ची बुनियाद मिल सके।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।